ये है संयुक्त राष्ट्र रेडियो और मैं हूं महबूब खान, साप्ताहिक समाचार परिक्रमा के साथ। 1 जून 2018 के इस अंक में आप सुन सकेंगे, तंबाकू सेवन से होती हैं जानलेवा बीमारियां, ये सच्चाई जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर। अफगानिस्तान में अदालती प्रक्रिया की अनदेखी से महिलाओं को नहीं मिल पाता न्याय। अफ्रीकी देश माली में बढ़ते चरमपंथ से अस्थिरता, लाखों बच्चे मौत के कगार पर। और सऊदी अरब में गिरफ्तार किए गए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अधिकार सुनिश्चित करने की पुकार। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। अक्सर देखा गया है कि बहुत से माता पिता अपने छोटे बच्चों के सामने ही तंबाकू सेवन और धूम्रपान करने में अपनी शान समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि छोटी सी भूल से उनके बच्चों के स्वास्थ्य और जिंदगी की राह बिल्कुल बदल सकती है और जिसकी मंजिल मौत के रूप में भी सामने आ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अब भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर 10 में से 7 यानी करीब 70% लोगों को अभी ये नहीं मालूम कि धूम्रपान से जानलेवा बीमारियां भी होती हैं। संगठन ने गुरुवार 31 मई को नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषिद्ध दिवस के मौके पर ये ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र की इस स्वास्थ्य एजेंसी ने दुनिया भर में धूम्रपान और तंबाकू सेवन करने वाले लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि धूम्रपान की लत की वजह से हर साल करीब 30 लाख लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पदाधिकारी डॉ कस्टीन शॉर्ट ने संयुक्त राष्ट्र रेडियो के साथ खास बातचीत में कहा,
This is so important because while many people know that tobacco can cause cancer, many people are shockingly not aware that tobacco can also cause cardiovascular diseases.
ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग तो जानते हैं कि धूम्रपान से कैंसर होता है, मगर बहुत से लोग अब भी ये नहीं जानते कि तंबाकू सेवन से जानलेवा बीमारियां होती हैं, जिनमें दिल की बीमारियां भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अगर चीन में आप पूछें तो करीब 73% आबादी को ये नहीं मालूम कि तंबाकू के सेवन से स्ट्रोक भी हो सकता है। वहीं इंडोनेशिया में इस तरह की जानकारी नहीं रखने वालों की संख्या करीब 55% है। सीधे तौर पर तंबाकू का सेवन करने और धूम्रपान से परोक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोगों को होने वाली बीमारियों से एक साल में करीब 30 लाख लोगों की मौतें हो जाती हैं। लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें जागरूक बनाने की मुहिम के तहत व्यापक अभियान चलाया गया है। साथ ही डॉक्टरों से भी कहा जा रहा है कि वो लोगों को तंबाकू के सेवन के नुकसानों के बारे में भरपूर जानकारी मुहैया कराएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर कस्टीन शॉर्ट के शब्द। डॉक्टर कस्टीन शॉर्ट का कहना था कि जो लोग धूम्रपान की लत को छोड़ना चाहते हैं उनके लिए हर तरह की सहायता और समर्थन उपलब्ध है। अफगानिस्तान में परिवारों के झगड़ों में अदालती प्रक्रिया का सहारा लेने के बजाय समुदायों या खानदानों के जरिए सुलह सफाई कराने की परंपरा रही है। इसका नतीजा ये देखा गया है कि अक्सर महिलाओं पर जुल्म करने वाले लोग अदालती प्रक्रिया का सामना करने से बच जाते हैं और जुल्म की शिकार महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि इस वजह से महिलाओं पर जुल्म रुकने के बजाय फिर से होने की बहुत संभावनाएं होती हैं, क्योंकि महिलाओं पर जुल्म करने वालों में अदालती प्रक्रिया और दंड भुगतने का कोई डर नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय OHCHR ने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि जुल्म की शिकार महिलाओं पर समुदायों, परिवारों और खानदानों की तरफ से सुलह सफाई का फैसला स्वीकार करने का दबाव डाला जाता है। इससे महिलाओं पर अत्याचार करने वाले पुरुषों या महिलाओं को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता और जुल्म की शिकार महिलाओं को पूरी तरह न्याय नहीं मिल पाता है। रिपोर्ट कहती है कि इसलिए महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और जुल्मों को अंजाम देने वालों को अक्सर सजाएं नहीं मिल पाती हैं। इनमें खानदान की इज्जत यानी ऑनर किलिंग्स के मामले भी शामिल होते हैं। रिपोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2016 और 17 के दौरान खानदानों की इज्जत के नाम पर 280 हत्याएं हुई थीं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त जायद राद अल हुसैन का कहना है कि इस तरह की सुलह सफाई का सहारा लेने और अदालती प्रक्रिया को नजरअंदाज करने के नतीजे ये निकलते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और जुल्म फिर होने की बहुत संभावनाएं होती हैं। ऐसा माहौल होने से देश की कानूनी व्यवस्था में महिलाओं का भरोसा टूट जाता है और एक बड़ी आबादी को भी अदालतों पर कोई भरोसा नहीं रह जाता। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि माली में लगातार खराब होते सुरक्षा हालात की वजह से लाखों बच्चों का जीवन खतरे में पड़ गया है। माली के उत्तरी हिस्से में साल 2012 तक इस्लामी चरमपंथियों का दबदबा था, जिन्हें फ्रांसीसी सेना ने बेदखल किया था। तभी से वहां अस्थिरता और असुरक्षा के हालात हैं। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक माली में शांति बहाल करने के प्रयासों में लगे हैं, लेकिन उन पर इस्लामी चरमपंथियों के हमले होते रहते हैं। कहा यह जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का ये मिशन बेहद खतरनाक मिशनों में से एक है। माली में असुरक्षा के हालात की वजह से 5 साल से कम उम्र के करीब 8.5 लाख बच्चे एक्यूट मैलन्यूट्रिशन यानी गंभीर कुपोषण का शिकार हो गए हैं। यूनिसेफ प्रवक्ता क्रिस्टोफ बुलियरेक ने जिनीवा में पत्रकारों को बताया कि इनमें से करीब 2.5 लाख बच्चों का स्वास्थ्य समुचित खाना पानी नहीं मिलने की वजह से इतना बिगड़ गया है कि उनकी मौत हो जाने का खतरा पैदा हो गया है।
Away from the world's attention and amid increasing violence, more children are going hungry in Mali, missing out on learning and dying in the first days of life.
इन बच्चों के हालात की तरफ दुनिया का कोई ध्यान नहीं है और ये लगातार हिंसा का शिकार होते रहते हैं। इन हालात में भूखे पेट रहने वाले और कुपोषण का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वजह से ये बच्चे शिक्षा हासिल करने से भी वंचित हैं और बहुत से बच्चे तो जीवन के शुरुआती दिनों में ही मौत के मुंह में जा रहे हैं। यूनिसेफ प्रवक्ता क्रिस्टोफ बुलियरेक के शब्द। यूनिसेफ का यह भी कहना है कि खासतौर से माली के उत्तरी इलाकों में खाने पीने के सामान की भारी कमी है। इनमें टिम्बकटू का इलाका भी शामिल है, जहां सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन यानी बेहद गंभीर कुपोषण की तादाद 15% हो गई है। यूनिसेफ के अनुसार माली के उत्तरी और कुछ केंद्रीय इलाकों में 750 स्कूल बंद पड़े हैं और 20 लाख से ज्यादा बच्चों को तालीम हासिल करने के मौके और सुविधाएं नहीं मिल पा रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को माली का दौरा किया और अफ्रीका के सहेल क्षेत्र में आतंकवादी खतरों को दूर करने के लिए प्रयासरत क्षेत्रीय सेना के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराने का आह्वान किया। महासचिव ने मोपती पहुंचने के बाद G5 सहेल फोर्स बेस का दौरा किया और उन तमाम लोगों का हौसला बढ़ाया जिन्होंने इस क्षेत्रीय शांति बल में शामिल होकर अमन और स्थिरता कायम करने का बीड़ा उठाया है। ये फोर्स पूरे सहेल क्षेत्र में बढ़ते चरमपंथ के मद्देनजर शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। G5 फोर्स के गठन में बुर्किना फासो, चैड, माली, मोरिटानिया और नाइजेर नामक 5 देशों ने संसाधन मुहैया कराए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय OHCHR ने सऊदी अरब में अनेक मानवाधिकार और सिविल लिबर्टीज कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की आलोचना की है। सऊदी सरकार से इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बंदी बनाकर रखे गए स्थानों के बारे में जानकारी देने का भी अनुरोध किया गया है। साथ ही अगर उन पर कोई आरोप हैं तो उन्हें निष्पक्ष, न्यायिक और अदालती प्रक्रिया की सुविधा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि गिरफ्तार किए गए कम से कम 13 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में अनेक महिलाएं भी हैं। इन्हें 15 मई को गिरफ्तार किया गया था। मानवाधिकार कार्यालय का कहना है कि बाद में ऐसी खबरें आईं कि 4 महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया था। मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता एलिजाबेथ रोसेल ने जिनीवा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब भी 6 महिलाएं और 3 पुरुष सऊदी अधिकारियों की हिरासत में हैं। इनमें से एक महिला को तो इस तरह हिरासत में रखा गया है कि उसका कोई अता पता नहीं है और न ही किसी भी तरीके से उससे संपर्क किया जा सकता है। मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता एलिजाबेथ रोसेल ने सऊदी सरकार से आग्रह करते हुए कहा,
We urge the Saudi Arabian authorities to reveal their locations and ensure their rights to due process guarantees. These include the right to legal representation, the right to know the reason for their arrests, the nature of the charges against them, the right to have access to their families.
हम सऊदी अरब सरकार के अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि गिरफ्तार की गई महिलाओं का पता ठिकाना सार्वजनिक किया जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के नागरिक अधिकारों की गारंटी रहे, जिनमें उन्हें न्यायिक और अदालती प्रक्रिया की सुविधा मिले। उन्हें ये जानने का भी हक दिया जाए कि उन्हें किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उन्हें अपनी पसंद के वकील के जरिए अपनी बात अदालत में रखने की भी इजाजत मिले। इसके अलावा इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अपने परिवारों से भी मिलने का मौका दिया जाए। इसके साथ ही इन्हें अपनी गिरफ्तारियों को कानून द्वारा स्थापित सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष अदालत या ट्राइब्यूनल में चुनौती देने का भी अधिकार दिया जाए। और अगर उन पर किन्हीं आरोपों के तहत मुकदमा भी चलाया जाता है तो उस मुकदमे को कम से कम संभव समय में निपटाया जाए। मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता एलिजाबेथ रोसेल के शब्द। मानवाधिकार कार्यालय ने इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों को भ्रम पैदा करने वाला घटनाक्रम करार दिया। उनका कहना है कि एक तरफ तो सऊदी सरकार सामाजिक सुधारों के जरिए अनेक पाबंदियों को हटाने के संकेत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को इस तरह गिरफ्तार करना कैसे सही ठहराया जा सकता है। गौरतलब है कि नए सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल के महीनों में कुछ सामाजिक सुधार करने के संकेत दिए हैं। इन सुधारों में महिलाओं को अब कार चलाने यानी ड्राइविंग की इजाजत दिए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही लोगों के मनोरंजन के लिए सिनेमा घर भी खोले जाएंगे। ध्यान रहे कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 नामक पहल के तहत अनेक आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये थी साप्ताहिक समाचार परिक्रमा संयुक्त राष्ट्र रेडियो से। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।